ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को 3 से 11 लाख तक का पुरस्कार देने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया ऐलान। कहा, पुरस्कार से खिलाड़ी होंगे प्रोत्साहित और लाएंगे और भी अच्छे परिणाम। बैंक और वित्तीय संस्था का सिस्टम हैक कर करोड़ों रकम लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में तत्काल सहभागी होने का नेपाल राष्ट्र बैंक ने किया निर्देश। और भारत के असम में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बढ़ते विरोध को देखते हुए गुवाहाटी में लगा दिया गया कर्फ्यू। इसी बीच राज्यसभा से विधेयक हुआ पारित। सरकार ने 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग में विभिन्न खेल विधाओं में पदक प्राप्त करने वाले 206 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए सहयोग राशि की घोषणा की है। खिलाड़ियों को खेल के प्रति आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पुरस्कार रकम की घोषणा की है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 9 लाख, 1 से अधिक स्वर्ण पाने वाले को 11 लाख, रजत पाने वाले को 6 लाख और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 3 लाख रूपये का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक खेल में स्वर्ण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 5 लाख, साथ ही स्वर्ण पदक दिलाने में सफल कोच को भी 5 लाख रूपये देने की घोषणा की। साग में नेपाली खिलाड़ियों के बढ़िया प्रदर्शन को लेकर बधाई देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि पुरस्कार से नेपाली खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे और आने वाली प्रतियोगिताओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण समेत विभिन्न पदक जीतने वाले नेपाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी है। आज दोपहर को ट्वीट कर राष्ट्रपति भंडारी ने साग के सफल आयोजन को लेकर युवा तथा खेलकूद मंत्रालय, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद, नेपाल ओलंपिक कमेटी, प्रशिक्षक लगायत संबद्ध सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है, इस प्रतियोगिता से दक्षिण एशियाई देशों और जनता के बीच संबंध और भी मजबूत हुआ है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं के सिस्टम को हैक कर करोड़ों की रकम चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए 3 लोगों को पुलिस ने आज सार्वजनिक किया है। गिरफ्तार हुए लोगों में दोलखा फुलपा के 52 वर्षीय रमेश खड़का, नवलपुरा से की रामग्राम नगरपालिका 17 के विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी और संदीप कलवार शामिल हैं। महानगरीय अपराध महाशाखा टेकू से मिली जानकारी के मुताबिक इस काम को अंजाम देने में 2 नाइजीरियन नागरिक और 10 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाइबर, व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक लगाकर सामाजिक संजालों की मदद से उन्होंने करोड़ों की रकम की ठगी की है। कंचनपुर की महाकाली नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में आज जंगली हाथी के आक्रमण में 2 महिलाओं की जानें चली गईं और 4 घायल हैं। कंचनपुर के मायापुरी सामुदायिक वन में घास और जलावन काटने के लिए गई अनुमानित 50 वर्षीय भूरी देवी बोहरा और 38 वर्षीय वसंती देवी भट्ट की हाथी के हमले में हुई मौत की जानकारी कंचनपुर के DSP नरेंद्र बहादुर चंद ने दी। हाथी के हमले में घायल हुई ललिता बोहरा, उमा साउद, सरिता ओझा और सुनीता विष्ट को अतिरिक्त इलाज के लिए भारत ले जाया गया है। हाथी द्वारा और नुकसान पहुंचाया जा सकने के मद्देनजर सभी से सावधान रहने और जंगल में न जाने का आग्रह किया गया है। संघ द्वारा लाए जा रहे कानून को संविधान द्वारा स्थानीय सरकारों को दिए गए अधिकारों के विपरीत बताते हुए स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने असंतुष्टि जताई है। गांवपालिका राष्ट्रीय महासंघ द्वारा आज काठमांडू में बुलाए गए स्थानीय सरकार और मौजूदा संघीय कानून विषयक विचार विमर्श में उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ ने संघीय सरकार पर स्थानीय तह के अधिकारों में कटौती करते हुए संघीयता की भावना के विपरीत कदम उठाए होने का आरोप लगाया। मौके पर महासंघ के सचिव वंशलाल तामांग ने कहा कि स्थानीय सरकार से संबंधित संघीय संसद दर्जनों कानून बना रही है, मगर स्थानीय तहों के साथ कोई समन्वय नहीं किया गया। कार्यक्रम में कार्यपत्र प्रस्तुत करते हुए संविधानविद डॉ विपिन अधिकारी ने कहा कि संघ द्वारा बनाए गए कई ऐसे आईन हैं जो कि स्थानीय तह और संघीयता के अनुकूल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि संघ को स्थानीय तहों से समन्वय करना चाहिए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक संदेश।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबूजी।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबूजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छ त्यसो नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। महिला और समावेशी मुद्दों पर सक्रियता से आवाज उठा रही महिला सभासदों और सांसद समूह की नई कार्य समिति का गठन किया गया है। समूह की आज हुई बैठक द्वारा गठित कार्य समिति में देश के सातों प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। नवगठित कार्य समिति में उषा कलाराय, नीलम वर्मा, कल्पना राणा, आशा कोईराला, दामा शर्मा, पुष्पा भूषाल, मोहम्मद सिद्दीकी, कमला विश्वकर्मा, विमला केसी, कुंती शाही और रूपा चौधरी शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में भूस्खलन का जोखिम बढ़ने के मद्देनजर नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड दैनिक 4 घंटों के लिए बंद किया जाएगा। जिला प्रशासन कार्यालय ने आज सुबह सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई थी। बैठक ने मार्गशीर्ष 27 से पूछ 10 तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सड़क बंद करने का निर्णय लिया था। एम्बुलेंस, शव वाहन, सुरक्षा निकायों और अन्य अति आवश्यक सवारी साधनों को सुरक्षा निकायों से समन्वय कर पास दिए जाने की जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टाराय ने दी। नेपाल लोकवार्ता संस्कृति समाज के आयोजन में परसों शुक्रवार से काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय लोकवार्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसी मार्गशीर्ष 27 से 29 तक चलने वाले सम्मेलन में नेपाल सहित भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और रूस के 96 विज्ञ विभिन्न देशों की कला, संस्कृति, लोक बाजा, जात जाति, वेशभूषा संबंधी 86 कार्यपत्र प्रस्तुत करेंगे। नेपाल राष्ट्र बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को तत्काल योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में सहभागी होने का निर्देश किया है। केंद्रीय बैंक ने एक सूचना जारी करते हुए सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और इनसे आबद्ध कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कोष में सूचीकृत करने का निर्देश किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के असम में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बढ़ते विरोध को देखते हुए गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 10 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसले ऐसे समय लिए गए जब असम में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विधेयक का विरोध किया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुईं। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। असम में यह कहकर नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है कि इससे असम समझौते का उल्लंघन होता है। यह समझौता 15 अगस्त सन 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ था। उनकी मांग थी कि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाए। असम समझौते के मुताबिक प्रवासियों को वैधता प्रदान करने की तारीख 25 मार्च 1971 है, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में इसे 31 दिसंबर 2014 माना गया है। मोदी सरकार के इस विधेयक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंध रखने वाले 6 मजहबों, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी के उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने या तो भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश किया हो या यहां आने के बाद उनके कागजात एक्सपायर्ड हो गए हों। इस विषय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के तीनों पड़ोसी धर्मशासित देशों में अल्पसंख्यकों का लगातार मजहबी उत्पीड़न हुआ है जिसकी वजह से उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी है। 6 अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता का अधिकार देने का फैसला सर्वधर्म समभाव की भावना के अनुरूप है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य हैं। धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, लेकिन इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म बताया गया है। ये उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से यहां रह रहे हों। इसी बीच भारत की राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि प्रस्ताव के विरोध में 105 सदस्यों ने मतदान किया। इससे पहले राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। बिल के समर्थन में 99 वोट पड़े जबकि सेलेक्ट कमेटी में भेजने के खिलाफ 124 सदस्यों ने मतदान किया। अमेरिका के जर्सी शहर में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए हैं। शहर के मेयर स्टीवन फुलप के अनुसार 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। शहर के ग्रीनविले इलाके में कम से कम 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जर्सी शहर हडसन नदी की दूसरी तरफ है। हडसन नदी के एक तरफ न्यूयॉर्क शहर है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि गोलीबारी करने वाले कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये कोई चरमपंथी हमला हो। पुलिस के अनुसार हमलावर के पास भारी राइफलें थीं और सैकड़ों राउंड गोलियां थीं। बाद में स्वेट जैसी विशेष पुलिस दस्ते को बुलाया गया जिसने संदिग्धों को मार डाला। दुकान के अंदर 3 लोग मारे गए। पुलिस का कहना है कि दुकान के अंदर मारे गए लोगों की मौत हमलावरों की गोली से हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। तेरहवीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को 3 से 11 लाख तक का पुरस्कार देने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया ऐलान। कहा, पुरस्कार से खिलाड़ी होंगे प्रोत्साहित और लाएंगे और भी अच्छे परिणाम। बैंक और वित्तीय संस्था का सिस्टम हैक कर करोड़ों रकम लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में तत्काल सहभागी होने का नेपाल राष्ट्र बैंक ने किया निर्देश। और भारत के असम में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बढ़ते विरोध को देखते हुए गुवाहाटी में लगा दिया गया कर्फ्यू। इसी बीच राज्यसभा से विधेयक हुआ पारित। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।